ओम शांति। 30 नवंबर 2023 आज की साकार मुरली का रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें रूहानी पंडा बन, तुम्हें रूहानी पंडा बन यात्रा करनी और करानी है। यात्रा करनी भी है और करानी भी है। याद ही तुम्हारी यात्रा है। क्या कह रहे हैं बाबा? आज तक तो हम यही सुनते आए थे, याद की यात्रा। याद की यात्रा और याद ही तुम्हारी यात्रा है। याद करते हुए याद करने का मतलब ही है आगे बढ़ना। याद की यात्रा और याद करते हुए आगे बढ़ना, याद ही यात्रा है। याद का मतलब ही क्या है? अब तक था याद का मतलब बाबा की श्रीमत पर चलना, बाबा का कहना मानना। और आज बाबा क्या कहते हैं? याद माना बाबा की श्रीमत पर आगे बढ़ना। याद ही तुम्हारी यात्रा है। यदि तुम याद कर रहे हो और यात्रा नहीं हो रही, आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो फिर वो याद नहीं है, वो याद नहीं है। याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़े। क्या मतलब? याद करने से खुशी का पारा क्यों चढ़ेगा? प्राप्ति होती है तो खुशी होती है। अब क्या होता है कि आपने सोचा कि मेरे को साइकिल मिल जाए ना तो मेरा काम बढ़िया हो जाए, और जो साइकिल मिल गई, खुशी तो हुई कि साइकिल मिली, पर तो साइकिल मिलने के बाद वो खुशी खत्म। फिर थोड़ा स्कूटी होती तो अच्छा होता, फिर स्कूटी मिल गई तो बाइक होती, तो गाड़ी होती तो बढ़िया वाली गाड़ी होती है, तो बढ़िया वाली गाड़ी आ गई, नहीं और बढ़िया वाली गाड़ी होती। थोड़ा आपको खुशी तब मिले क्योंकि जो चीज आपने प्राप्त कर दी, प्राप्त करने के बाद उसकी खुशी खत्म, उसकी खुशी खत्म। तब तक था कि वो चाहिए चाहिए, पर तो जब वो मिल गया तो उसकी खुशी खत्म। तो इसी तरह हमारी उन्नति में भी जितना चाहिए उसके बाद भी कसर रह जाती है कि अभी और चाहिए, अभी और चाहिए, अभी भी कमी है। कब तक? जब तक 100% पवित्र नहीं बनते, 16 कला संपूर्ण नहीं बनते, हर कर्म में बाप समान नहीं बनते, तब तक कमी दिखती रहेगी और उस कमी को भरते रहना ही याद। और जब हमारे अंदर थोड़ी सी और कमी कम हुई, गुण बढ़े तो हमें खुशी मिलेगी, और गुण बढ़ा तो और खुशी मिलेगी, और हम रुक गए तो खुशी भी रुक जाएगी, खुशी भी रुक जाएगी। खुशी केवल प्राप्ति पर नहीं है, खुशी प्राप्त करने में है। जो प्राप्त हो गया खत्म, जब जिसके लिए हम इंतजार कर रहे थे वो हमें मिल गया, खुशी खत्म, आगे और चाहिए, ठीक है? खुशी का पारा चढ़े, शब्द क्या यूज किया है? खुशी का पारा चढ़े। याद करते रहो तो खुशी बढ़ती जाएगी, पारा चढ़ता जाएगा। प्रश्न, निराकारी दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते? निराकारी दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते और कौन से संस्कार रह जाते हैं? निराकारी दुनिया कौन सी है? परमधाम। जब हम आत्माएं परमधाम जाती हैं, इसको समझना है तो आप मुझे बता पाएंगे कृष्ण की आत्मा जब परमधाम जाएगी तो क्या संस्कार, कौन से संस्कार खत्म हो जाएंगे और कौन से संस्कार रह जाएंगे? क्या खत्म हो जाएगा ये बताओ, प्रैक्टिकल बताओ।
संस्कार लेके जाएगी, देवी संस्कार लेके जाएगी।
कौन से संस्कार पहले ये बताओ खत्म हो जाएंगे, यहां से जाने के बाद जब वापस आएगी क्या क्या उसके पास नहीं होगा? और बहुत कुछ रहेगा, वापस लाने वाला भूल गया। जाने पर सारे संस्कार खत्म हो जाएंगे जो यहाँ पर थे। मैं पढ़ता था, पढ़ाता था, क्या था, जो भी आते, मुझे रोजाना अमृत वेले उठना है, ये करना है, वो करना, ये सारे के सारे संस्कार, सारे देह के संबंध, सब देह की वस्तुओं की आदतें जो भी थी, जो कि यहाँ की सारी आदतें सब खत्म हो जाएंगी। अब क्या आएगा वापस हमारे साथ? प्रारब्ध। हमने प्रारब्ध के संस्कार, प्रारब्ध के संस्कार क्या है कि हमने यहाँ पर ईमानदार बनना सीख लिया तो वह हमारे पास ईमानदारी होगी, पवित्रता होगी, है नहीं? मतलब जो सातों गुण हैं वो हम सातों गुण यहां से भर के गए हैं, सब हमें अपने लगेंगे, सबको हम सहयोग देंगे, है नहीं? मतलब जो हमारे गुण हैं वो हमारे प्रारब्ध के रूप में हमारे साथ आएंगे। अब हम उन गुणों को और इम्प्रूव करना चाहें वो हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि याद की यात्रा में हम अपने एक एक गुण को बढ़ाते जा रहे थे और बढ़ाते जा रहे थे और बढ़ाते जा रहे थे। अब वहां पर बढ़ना बंद। जो संस्कार हम यहाँ बना रहे थे देवी संस्कार परमात्मा के डायरेक्शन पर, वो बन गए। जितना भी आप किसका 80% बनाए, किसका 90% बनाए, किसका 100% बना है, जितना बन गया है वो वहीं से आएगा और वहीं से गिरना शुरू हो जाएगा। परंतु जो यहाँ के संस्कार थे वो सारे के सारे संस्कार खत्म। या हम सवेरे चाय पराठा खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, करते हैं, करते वहां वो ये संस्कार नहीं आएगा। वहां की प्रकृति के अनुसार हमें जो खाना होगा, जो पहनना होगा, वो संस्कार, ऐसा भोजन जो हमारे शरीर के लिए सत्वप्रधान हो, क्योंकि वो भी आदत हम यहाँ से बना के जाएंगे, वही हमारे साथ वापस आएंगी। वहां नॉलेज के संस्कार समाप्त हो जाएंगे। जो ज्ञान हम ले रहे हैं ना, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, सृष्टि चक्र चलता है 5000 साल का, 21 जन्म, 18 जन्म, 12 जन्म, ये जो सारे ज्ञान की बातें हैं सारी, सुदर्शन चक्र फिर आते हैं, या जो भी हमारे पास दुनियावी ज्ञान है वो सब खत्म हो जाएगा। प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। इस संसार के बाकी सारे संस्कार खत्म हो जाते हैं। इस ज्ञान के आधार पर जो हमने प्रारब्ध बनाई है वो संस्कार हमारे साथ आते हैं। और यदि हमने गंदे संस्कार बनाए हैं तो गंदे संस्कार भी साथ में आएंगे। हमने अपने आप को सुधारा नहीं तो हम उन गंदे संस्कारों के साथ ही वापस आएंगे। तो हम आएंगे उस समय जब उन संस्कारों के अनुसार दुनिया होगी, ठीक है? क्या जिन संस्कारों के आधार पर तुम बच्चे सतयुग में प्रारब्ध भोगते हो, वहां फिर पढ़ाई का व पुरुषार्थ का संस्कार नहीं रहता। हमने रोजाना सवेरे उठ के पढ़ने जाना है और योग लगाना है, करना है, ये संस्कार नहीं रहेंगे। प्रारब्ध मिल गई, हमने डॉक्टर का कोर्स करना था, वो सारी डॉक्टर की किताबें पढ़ी, जब डिग्री मिल गई, अब उन किताबों को कौन पढ़े, यानी वो सारे प्रोसेस जो है ना चेंज हो जाएंगे। कौन स्कूल जाए, कौन कॉलेज में क्लास अटेंड करे, ये करे वो करे, अब तो उसने डॉक्टर की दुकान पर बैठना है या हॉस्पिटल में बैठना है जहां उसने उनका इलाज करना है। अब वो प्रोसेस वो सब कुछ क्या हो जाएगा, उसका खत्म हो जाएगा। गीत रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। यहां सम्मुख शिव भगवानो वाच है, गीता में दिखाते हैं श्री कृष्ण भगवानो वाच, परंतु श्री कृष्ण तो उस नाम रूप से सम्मुख हो ना सके, सम्मुख हो नहीं सकता। ये तो सम्मुख कहते हैं निराकार भगवानो वाच। श्री कृष्ण कहे न कहें तो वे साकार हो जाता है। जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं दुनिया में, जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते हैं, वो ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवानो वाच। वेद शास्त्र सुनाएंगे, वो क्या कहेंगे, सूत जी ने कहा, सुखदेव ने कहा, तोता ने कहा, मैना ने कहा, मतलब वो उनके नाम लेंगे। वो परमात्मा कह रहा है, वो ये नहीं कहेंगे नारायण जी ने कहा नारद को, ठीक है, मतलब किसी ना किसी का नाम लेंगे। बहुत समय पहले की बात है, तो ये साधु संत महात्मा आदि सब साकार में बैठे हैं, और फिर बाप कहते हैं हे रूहानी राही। यहां बाप बैठकर क्या कहते हैं, हे रूहानी राही। रूहानी बाप जरूर रूहों को ही कहेंगे, रूहानी बाप जरूर रूहों को ही कहेंगे कि बच्चे थक मत जाना। यात्रा पर कई थक जाते हैं, यात्रा पर कई थक जाते हैं, तो फिर वापस आ जाते हैं, तो फिर वो क्या हो जाता है, वापस आ जाते हैं। वो है जिस्मानी यात्रा, वे है जिस्मानी यात्रा। भिन्न भिन्न मंदिरों में जिस्मानी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, कोई शिव के मंदिर में जाते हैं, वहां सब जिस्मानी चित्र रखे, वहां सब क्या रखे हैं, जिस्मानी चित्र रखे हैं भक्ति मार्ग के, वो भी किसके हैं, ये तो सुप्रीम रूह परम पिता परम आत्मा आत्माओं को कहते हैं, आत्माओं को कहते हैं कि हे बच्चे, हे बच्चे, अब मुझ एक के साथ बुद्धि का योग लगाओ, बुद्धि का योग लगाओ। और ज्ञान भी देते हैं, तीर्थों पर जाते हैं तो वहां भी ब्राह्मण लोग बैठे हैं, वहां भी कौन बैठे हैं, ब्राह्मण लोग बैठे हैं। कथा कीर्तन, कथा कीर्तन करते हैं, तुम्हारी तो एक ही सत्य नारायण की कथा है, तुम्हारी तो एक ही सत्य नारायण की कथा है। नर से नारायण बनने की, नर से नारायण बनने की, तुम जानते हो पहले स्वीट होम में जाएंगे फिर विष्णुपुरी में आएंगे, इस समय तुम हो ब्रह्मापुरी में, स्वीट होम में जाएंगे और ब्रह्मा विष्णुपुरी में आएंगे। इस समय तुम कहां हो, इस समय तुम कहां हो, कौन कहलाते हो, क्या क्या कहलाते हो और क्या कहलाते हो, हाँ ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां, तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां कहां होंगे और कहां होंगे, अपने बाप के घर में होंगे ना। ब्रह्मापुरी नाम दिया है आज, आप कहाँ बैठे हो? ब्रह्मापुरी में बैठे हो। इसको पियर घर कहा जाता है। आप कहाँ बैठे हो? पियर घर में बैठे हो। और जब पियर घर में रहते हैं तो जेवर आदि कुछ नहीं पहनते। पियर घर में क्या पहनना, क्योंकि तुम पियर घर में हो, तुम जानते हो ससुर घर में हमको अपार सुख मिलने हैं। ससुर घर में मिलेंगे हमें अपार सुख। वो कहाँ है? सतयुग सुख धाम। यहाँ कलयुग है, ससुर घर में कलयुगी ससुर घर में तो अपार दुख। इस कलयुग के ससुर घर में क्या मिलते हैं? अपार दुख मिलते हैं। बस बस जब तक मायके में रहते तरह निकले यहाँ से तो ससुर घर जाए, पर तू ससुर घर जाने के बाद कोई सुख नहीं है, सिवाय दुख के कुछ है ही नहीं। ससुर घर में तो अपार दुख है कलयुग के। तुमको तो जाना है उस पार सुख धाम में, यहाँ से ट्रांसफर होना है। बाप सभी को नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं, दिखाते हैं ना। श्री कृष्ण का बाप उनको टोकरी में बिठाकर उस पार ले गया। तो ये बेहद का बाप तुम बच्चों को उस पार ससुर घर ले जाते हैं। पहले अपने निराकारी घर में ले जाते हैं, जाएंगे फिर ससुर घर भेज देंगे। तो वहां ये सब पियर घर ससुर घर की बातें भूल जाएंगे। यहाँ पता है हमें ये पियर घर है, वो ससुर घर है, पर तो वहां ये याद नहीं आएगा कि वो पियर घर छोड़कर मैं ससुर घर में आ गई हूँ। वो याद नहीं आएगा, पियर घर की कोई बातें याद नहीं आएंगी, सारी बातें भूल जाएंगी। वो है निराकारी पियर घर। कौन सा निराकारी पियर घर है? हाँ जी, निराकारी पियर घर कहाँ है? परम धाम। वहां ये नॉलेज भूल जाती है, वहां कुछ भी नहीं पता। नॉलेज के संस्कार निकल जाते हैं, बाकी प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। फिर तुम बच्चों को प्रारब्ध ही ध्यान में रहती है, प्रारब्ध अनुसार जाकर सुख के जन्म लेंगे। सुखधाम की प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान खत्म, फिर ज्ञान खत्म। तुम जानते हो प्रारब्ध में हमारी फिर वही एक्ट होगी, प्रारब्ध में हमारी फिर वही एक्ट होगी। तुम्हारे संस्कार ही प्रारब्ध के हो जाएंगे। तुम्हारे संस्कार कैसे हो जाएंगे? प्रारब्ध के हो जाएंगे। अभी है पुरुषार्थ के संस्कार। अभी कौन से संस्कार हैं? पुरुषार्थ के संस्कार हैं। ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों संस्कार वहां रहेंगे, नहीं। वहां ये ज्ञान नहीं रहता। तो ये तुम्हारी रूहानी यात्रा है। ये तुम्हारी क्या है? रूहानी यात्रा है। तुम्हारा चीफ पंडा है बाप। चीफ गाइड कौन है तुम्हारा? बाप, रास्ता दिखाने वाला। यूं तो तुम भी रूहानी पंडे बन जाते हो, सबको साथ में ले जाते हो। वो है जिस्मानी पंडे। दुनिया में जो पंडे होते हैं वो जिस्मानी पंडे होते हैं, तुम हो रूहानी पंडे। वे लोग अमरनाथ पर बड़े 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 धूमधाम से जाते हैं, झुंड के झुंड, खास अमरनाथ पर बहुत धूमधाम से जाते हैं। बाबा ने देखा है कितने साधु संत बाजे गाजे ले जाते हैं, साथ में डॉक्टर आदि भी ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं डॉक्टर को? क्योंकि ठंडी का समय होता है, कई बीमार पड़ जाते हैं, तुम्हारी यात्रा तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं याद में रहना ही तुम्हारी यात्रा है, याद मुख्य है। बच्चे याद करते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। साथ में औरों को भी यात्रा पर ले जाना है। ये यात्रा एक ही बार होती है। वे जिस्मानी यात्राएं तो भक्ति मार्ग से शुरू होती हैं, वे भी कोई शुरुआत में नहीं होती। शुरुआत में कोई यात्रा नहीं करते, धीरे धीरे भक्ति भी बढ़ती है। ऐसे नहीं कि फट से मंदिर चित्र आदि बन जाते हैं, नहीं, फट से कोई मंदिर आदि चित्र नहीं बनते। मतलब मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हम बच्चे थे, पढ़ते थे, या जब हम ये धर्म ग्रंथ मंगाते थे, तो प्रिंटिंग जो है फोटो नहीं होते थे, फोटो प्रिंट नहीं होते थे, मतलब लाइन वाले चित्र बनते थे। राम को बनाना ना, ऐसे लाइन से बना करके फिर उसको काली लाइन से बना करके उसमें रंग भरा जाता था। जैसे आजकल का फोटो खींचा जाता है, ऐसे कोई कैमरे नहीं थे, कैमरे नहीं हुआ करते थे। मतलब कैमरे से फोटो खींचने का तो जमाना बहुत लेट आया है, ठीक है ना। और पहले वाले कैमरे भी जो है ना वो अलग होते थे, उसके अंदर अलग से जो है ना धूप में खड़े होकर के ना ऐसे ढक्कन हटाया जाता था और फिर वो फोटो खींचता था। नहीं, आ तो पहले गए थे, छोटे थे तब नहीं थे। और उस समय की जितनी किताबें, पुरानी जितनी भी किताबें आपको मिलेंगी, उसमें फोटो नहीं मिलेंगे, उसमें लाइन वाले चित्र मिलेंगे।
मुल्लर के तो मिलते थे जी, क्या?
हाँ,
जो मतलब जो मुसलमान थे उनके मिलते थे
क्या? नहीं भाई, नहीं,
जब हम पढ़ते थे तो ये होते
थे। अरे भाई, जब आप पढ़ते थे तो लेट हो गया ना उस समय। जो पुरानी किताबें ना, जब कैमरा आ गया, जो पुरानी किताबें हैं, जो मतलब आपके, आप थोड़ा छोटे होंगे ना, तो आपके टाइम से फर्क है हमारा जो भी 5-10 साल का, ठीक है। तो उसका जो है ना उस समय के अंदर मतलब अंतर था। मतलब हमने जितनी भी पुराने किताबें देखी, किताबें प्रिंट होके आती थी, प्रिंटिंग प्रेस वालों के पास फोटो बनाने का तरीका नहीं होता था। फोटो तो बहुत लेट आए हैं, ठीक है, परंतु आए कैमरा पहले आया तो वो फिर बहुत अमीर लोगों के पास था, क्योंकि आम लोगों के पास तो कैमरा था ही नहीं। और फिर किताब छापने वालों के पास कैमरा कहां से आए, उनके पास वो फोटो कहां से आए, प्रिंट कैसे करें, प्रिंट के लिए ठप्पे होते थे, प्रिंट करने के लिए ठप्पे होते थे। पहले हाथ से ठप्पे लगाए जाते थे, फिर मशीन से ठप्पे लगाए जाते थे। तो मतलब मेरा कहने का सिर्फ इतना है कि चित्र जो है बने हुए होते थे, हरे नीले लाल रंग भर के ना, उनके कपड़ों को दिखाना, दाग निशान लगाना, तो चित्र बनाने का तरीका अलग होता था। चित्र एक आधे तो चित्र बन जाते थे, मतलब आर्टिस्ट जो है ना हाथ से तो बना देते थे चित्र, परंतु उसको छापना नहीं हो पाता था। प्रिंटिंग प्रेस से छापा जाए वो नहीं होता था, वो लाइन वाले चित्र होते थे। ये तो डिजिटल प्रिंटिंग आई है तो ये सारे बने। आहिस्ते आहिस्ते बाद में बनते जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनेगा, वे भी पहले पहले घर में, पहले घर में सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, वो भी पहले घर में सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। फिर कहां जाने की दरकार नहीं रहती। ये मंदिर आदि बाद में बनाते हैं, समय लगता है। आहिस्ते आहिस्ते नए शास्त्र, नए चित्र, नए मंदिर आदि बनते रहते। टाइम लगता है, क्योंकि पढ़ने वाले भी चाहिए ना। मठ पंथ मठ आदि सब जब वृद्धि को पाएंगे, फिर विचार होगा शास्त्र बनाए। तो इतने तीर्थ स्थान बने, मंदिर बने, चित्र बने, टाइम लगता है ना। बल कहा जाता है कि भक्ति मार्ग द्वापर से शुरू होता है, परंतु टाइम तो लगता है ना। फिर कलाएं कमी कमती होती जाएंगी, पहले अव्यभिचारी भक्ति फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। ये सब बातें अच्छी रीति चित्रों पर सिद्ध कर बताई जाती हैं। समझाने वालों की बुद्धि में यही चलता रहेगा कि ऐसे ऐसे चित्र बनाएं, ये समझाएं, सबकी बुद्धि में नहीं चलेगा। नंबर वार है ना, कोई की बुद्धि बिल्कुल चलती नहीं, कोई की बुद्धि तो बिल्कुल चलती नहीं। वे फिर पद भी ऐसे पाएंगे, मालूम पड़ जाता है ये क्या बनेंगे। जितना आगे चलेंगे तुम समझते जाएंगे, जब लड़ाई आदि लगेगी फिर प्रैक्टिकल देख लेंगे, फिर प्रैक्टिकल देख लेंगे, फिर बहुत पछताएंगे, फिर बहुत पछताएंगे। उस समय पढ़ाई तो हो ना सके, उस समय पढ़ाई तो हो ना सके, लड़ाई के समय त्राही त्राही होती रहेगी, सुन नहीं सकेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। पार्टीशन हुआ तो क्या हो गया, पार्टीशन हुआ तो क्या हो गया, देखा देखा ना। ये विनाश का समय बहुत कड़ा है, ये विनाश का समय बहुत कड़ा है। बाकी साक्षात्कार आदि बहुत होंगे, साक्षात्कार आदि बहुत होंगे, जिससे जान जाएंगे कि ये कितना पड़ा है, बहुत पछताएंगे, फिर बहुत पछताएंगे। और साक्षात्कार होंगे, साक्षात्कार होंगे, देखो तुमने पढ़ाई छोड़ दी तब ये हाल हुआ। धर्मराज साक्षात्कार कराने सिवाय सजाएं कैसे देंगे, क्या समझ रहे हैं?
धर्मराज के बिना सजा
नहीं। ध्यान से देखो, ये बाबा बड़ा खराब है। धर्मराज साक्षात्कार कराने सिवाय सजाएं कैसे देंगे? हाँ, बिना बताए सजा कैसे देंगे? सब साक्षात्कार कराएंगे कि तुमने ये कर्म किए, अब ये इसकी सजा है। फिर उस समय कर कुछ नहीं सकेंगे। कौन है धर्मराज? खुद को याद आएगा, ये गलतियां करके आए हैं जिसके कारण आज ये सजा मिल रही है। फिर उस समय कुछ कर नहीं सकेंगे, कहेंगे हाय तकदीर। तदबीर का समय तो गया, तदबीर और तकदीर में क्या अंतर होता है? तदबीर है पुरुषार्थ और तकदीर है प्रालब्ध। तो बाप कहते हैं क्यों नहीं अभी पुरुषार्थ करते हो, सर्विस से ही दिल पर चढ़ेंगे। बाप कहेंगे ये बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं, मिलिट्री का कोई मरता है तो उनके मित्र संबंधियों आदि को भी इनाम देते हैं, यहाँ तुमको इनाम देने वाला है बेहद का बाप। बाप से भविष्य 21 जन्मों के लिए इनाम मिलता है, ये तो हर एक को अपने दिल पर हाथ रख कर पूछना है कि मैं कितना पढ़ता हूँ, मैं कितना पढ़ता हूँ। धारणा नहीं होती तो गोया तकदीर में नहीं है। कहेंगे कर्म ही ऐसे फूटे हुए हैं, बहुत खराब कर्म करने वाले कुछ उठा नहीं सकते, कुछ उठा नहीं सकते। बाप समझाते हैं मीठी बच्ची तुम्हें इस रूहानी यात्रा पर अपने साथियों को भी ले जाना है, फर्ज है हर एक को ये यात्रा की बात बताना। फर्ज है हर एक को ये यात्रा की बात बताना। बोलो हमारी ये रूहानी यात्रा है, हमारी ये रूहानी यात्रा है। वो है जिस्मानी, दिखाते हैं रंगून की तरफ एक छन छन तालाब है। रंगून की तरफ क्या है? एक छन छन तालाब है जहां स्नान करने से परी बन जाते हैं, लेकिन वो परी आदि तो बनते नहीं। ये है ज्ञान स्नान। इस ज्ञान स्नान करने की बात है जिससे तुम बहिष्ट की बीवी बन जाते हो। क्या बन जाते हो? स्वर्ग के रहने लायक बन जाते हो और ज्ञान योग बल से वैकुंठ में आना जाना तो तुम्हारे लिए कॉमन बात है, तो तुम्हारे लिए कॉमन बात है। और ही तुमको रोका जाता है घड़ी घड़ी ध्यान में नहीं जाओ, आदत पड़ जाएगी तो ये ज्ञान मान सरोवर है। परम पिता परम आत्मा आकर इस मनुष्य तन द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए इनको मान सरोवर कहा जाता है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मान सरोवर कहा जाता है। मान सरोवर अक्षर सागर से निकला है। मान सरोवर अक्षर कहां से निकला है? सागर से निकला है। ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करना तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहिष्ठ की बीबी को महारानी कहा जाता है। बाप कहेंगे तुम भी बहिष्ठ के मालिक बनो। बच्चों पर लव रहता है, हर एक पर रहम पड़ता है। साधुओं पर भी रहम आता है, ये तो गीता में लिखा हुआ है कि साधुओं का भी उद्धार करते हो। साधुओं का भी
उद्धार करते,
हाँ, मैं ही आता हूँ इन ऋषियों साधुओं संतों महात्माओं का भी मैं आकर क्या करता हूँ? उद्धार करता हूँ। उद्धार होता है कैसे होता है? उनका उद्धार कैसे होता है? ज्ञान और योग से। तुम बच्चों में समझाने की बड़ी फुर्ती चाहिए, समझाने की क्या चाहिए? फुर्ती चाहिए। बोलो तुम और तो सब जानते हो, लेकिन लेकिन क्या बताओगे? तुम सब कुछ जानते हो परंतु लेकिन क्या है? छाछ जानते। कल परसों बताया ना बाबा ने, भक्ति में क्या है? छाछ। हाँ, तुम तो छाछ जानते हो, बाकी मक्खन खिलाने वाले को तुम जानते ही नहीं। तुम जो कुछ भी जानते हो, जितने तुमने ये शास्त्र ग्रंथ ढेर पढ़ रखे हैं, वो सब क्या हैं? छाछ हैं। और ज्ञान या ज्ञान का मक्खन खिलाने वाला, उसको तो तुम जानते ही नहीं हो। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में भी बैठे ना, किसकी बुद्धि में भी बैठे ना। बाप को जानने से मनुष्य हीरे जैसा बनते हैं, ना जानने से मनुष्य कोड़ी मिसल बिल्कुल पतित बन जाते हैं। बाप को जानने से ही पावन बनते हैं, पतित दुनिया में कोई पावन हो ना सके। तो जो महारथी बच्चे हैं वे अच्छी रीति समझा सकेंगे। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा नाम भी मशहूर है। प्रजापिता ब्रह्मा के ये है मुख वंशावली। ये क्या है? मुख वंशावली। ब्रह्मा को ही सौ भुजा, हजार भुजा दिखाते हैं, ये भी समझाया जाता है, जितनी भुजाएं तो इतनी भुजाएं तो हो नहीं सकती। बाकी ब्रह्मा तो बहुत बचड़े वाला है, ब्रह्मा तो बहुत बचड़े वाला है। ब्रह्मा फिर किसका बच्चा, ब्रह्मा फिर किसका बच्चा, इनका तो बाप है ना। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, इनका और कौन बाप हो सकता है, मनुष्य तो कोई हो नहीं सकता, मनुष्य तो कोई हो नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर गाए जाते हैं सूक्ष्म वतन के, वे तो यहाँ आ ना सके, वे तो यहाँ आ ना सके। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा ना, सूक्ष्म वतन में तो प्रजा नहीं रचेंगे, सूक्ष्म वतन में तो प्रजा नहीं रचेंगे। तो परम पिता परमात्मा आकर इस ब्रह्मा मुख द्वारा शक्ति सेना रचते हैं, शक्ति सेना रचते हैं। पहले पहले परिचय देना है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, तुम भी ब्रह्मा के बच्चे हो ना। प्रजापिता ब्रह्मा है सबका बाप, फिर उनसे और बिरादरियां निकलती हैं, नाम बदलते जाते, नाम बदलते जाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो, प्रैक्टिकल में देखो प्रजापिता ब्रह्मा की कितनी औलाद है, कितनी औलाद है। जरूर औलाद को वर्षा मिलता होगा, ब्रह्मा के पास तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, प्रॉपर्टी है शिव बाबा के पास। ब्रह्मा वल्द शिव, ब्रह्मा वल्द शिव, बेहद के बाप से ही वर्षा मिलता है। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ पढ़ाते हैं, हमको दादे का वर्षा मिलता है। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु परंतु योग नहीं, परंतु योग नहीं, कायदे पर नहीं चलते तो बाप भी क्या करे। बाप कहते हैं इनकी तकदीर, बाप क्या कहते हैं फिर, इनकी तकदीर। अगर बाबा से पूछे, अगर बाबा से पूछे तो बाबा बता सकते, बाबा बता सकते हैं इस हालत में तुम्हारा क्या पद होगा, इस हालत में तुम्हारा क्या पद होगा। दिल भी गवाही देता है कि मैं कितनी सर्विस करता हूं, सबको पता लग जाता है ना कि मैं कितनी सर्विस करता हूं, या मैं श्री मत पर कहां तक चलता हूं, पता लग जाता है ना, हर एक को अपना अपना पता लग जाता है ना कि मैं कितना श्री मत पर चलता हूँ, कितना पढ़ाई को ध्यान से पढ़ता हूँ, कितना मैंने अपना जीवन परिवर्तन किया है। श्री मत कहती है मन मना भाव, अपने मन को बैठकर मनाओ। सबको बाप और वर्षे का परिचय देते रहते हैं, ढिंडोरा भी पीटते रहते हैं, बाबा इशारा देते रहते हैं। तुम्हें गवर्नमेंट को भी समझाना है जो वे भी समझे, वे भी समझे। बरोबर भारत की ताकत ही चली गई है, भारत की ताकत ही चली गई है। परम पिता परम आत्मा सर्वशक्तिमान से योग ही नहीं, सर्वशक्तिमान से क्या नहीं है, योग ही नहीं है। इनसे तुम योग लगाते हो तो एकदम क्या बन जाते हो, विश्व के मालिक बनते हो। किससे योग लगाते हैं, श्री बाबा से योग लगाते हैं, अर्थात उनकी श्री मत पर चलते हैं तो विश्व के मालिक बनते हो। माया पर भी तुम जीत पाते हो, इस योग के द्वारा तुम क्या करते हो, माया पर भी तुम जीत पहनते हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते माया पर जीत पाने। रहना घर परिवार में है, गृहस्थ को छोड़ना नहीं है, परंतु माया पर जीत पानी है। हमारा मददगार बाप है, कितना समझाया जाता है, धारणा करनी चाहिए। हमारा मददगार कौन है? बाप है, कितना समझाया जाता है, धारणा करनी चाहिए। बाबा ने समझाया है, धन दिए धन ना खुटे। सर्विस करेंगे तब बाबा की दिल पर चढ़ सकेंगे, तब बाबा की दिल पर चढ़ सकेंगे, नहीं तो इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा प्यार नहीं करते, बाबा प्यार नहीं करते, बाबा प्यार सर्विसेबल को करेंगे। बाबा प्यार किसको करेंगे? सर्विस एबल को करेंगे। मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। सबको यात्रा लायक बनाते हैं, सबको यात्रा के लायक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? मन, मना, भाव। यह है रूहानी यात्रा। मुझे याद करो तो तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। शिवपुरी में आकर फिर विष्णुपुरी में चले जाएंगे। ये बातें सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। कोई और मन मना भाव का अर्थ समझते नहीं, और कोई दुनिया में मन मना भाव का अर्थ समझते ही नहीं। पढ़ते तो बहुत है, बाप महामंत्र देते हैं, मुझे याद करो तो क्या होगा, तुम विकर्मा जीत बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, ज्ञान स्नान करना है, प्यार से सर्विस कर बाप के दिल तख्त पर बैठना है। पुरुषार्थ के समय में अलबेला नहीं बनना है, पुरुषार्थ के समय में अलबेला नहीं बनना है। नंबर दो, बाप की पलकों पर बैठ कलयुगी दुख धाम से सुख धाम चलना है, कलयुगी दुख धाम से सुख धाम चलना है। इसलिए अपना सब कुछ ट्रांसफर कर देना, अपना सब कुछ क्या करना है, ट्रांसफर कर देना है। वरदान, जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवारी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भाव। हमेशा हमेशा के लिए क्या रहो, हैप्पी, खुश रहो, सदा खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी फूलों के खुशहाली में आ गए। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है, दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई। इसलिए जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी, दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देख करके खुश होंगे, शक्ति का अनुभव करेंगे, खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती और खुशी में लाती है। इसलिए आप कहते हो कि हम एवर हैप्पी हैं। हम क्या हैं? हमेशा खुश हैं। स्लोगन, मास्टर सर्वशक्तिमान वे हैं जो माया के बुदबुदों से डरने की बजाय उनसे खेलने वाले। माया के बुदबुदे क्या होते हैं?
खेलने वाले
नहीं, बुदबुदे क्या होते हैं? हाँ, पानी में। मतलब दुनिया वाले कहते, मतलब जैसे पानी का बुदबुदा मानस ऐसी जात, मनुष्य जो ना ऐसे है जैसे पानी का बुलबुला, अभी बना अभी खत्म। परंतु बाबा कहते, बच्चे ये माया के बुदबुदे हैं, इनसे डरने की बात नहीं, इनसे खेलो। कागज का शेर है, बुलबुला क्या है? कुछ करता है? भूल जाता। ऐसे ही बाबा कहते माया भी क्या है? बुदबुदे की तरह है, इससे डरने की बजाय इनसे खेलो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।
Okay.